सुखो यहाँ लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम शुद्धात्मने
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुख यहाँ के प्रथम भाग के 14 नंबर के पृष्ठ पर हम आए हैं। अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, नया जो पैराग्राफ शुरू होता है ना, वहाँ से शुरू करते हैं। कल ये बात आई थी कि अनंत द्रव्य है, उसमें प्रत्येक द्रव्य एक एक परमाणु तक स्वतंत्र है, जुदा है, और उसका परिणमन अपने में अपने से होता है। अन्य किसी द्रव्य से साथ उसका कोई लेना देना है ही नहीं है। तो क्योंकि उसके सत्रूप वस्तु सत्रूप है, तो उसका परिणमन करना उसका स्वभाव है, वो निरंतर करना वो भी उसका स्वभाव है। अब यहाँ आगे हम बढ़ते हैं। अस्तित्व गुण यदि यह भाव करे कि मैं सत हूँ, ऐसा मुझे आदेश हुआ है, और स्वच्छंद होने लगे, तो इसका मुंह बंद करने के लिए वस्तुत्व गुण मौजूद है। उसकी आज्ञा है कि तू अपने चतुष्टय से ही सत रह सकता है, पर के चतुष्टय से नहीं। इस प्रकार कि मैं सत रहूं और उत्पाद व्यय से भिन्न रहना चाहे, तो उसको द्रव्यत्व गुण दबाता है कि तुझे निरंतर परिणमन करते रहना होगा। यदि द्रव्यत्व गुण कह के मैं तो परिणमाऊंगा, किसी रूप परिणमाऊं, तब द्रव्यत्व गुण को अगुरु लघुत्व गुण दबाता है कि तू अपने में परिणमनशील है, अतः अपने में ही परिणमन कर, यह न हो कि स्वच्छंद हो जावे। यदि तू ज्ञान गुण वाला है तो ज्ञानोदय रूप ही परिणमन कर, इत्यादि। प्रदेशत्व गुण आधार बताता है, प्रमेयत्व व्यवस्था करता है, सभी द्रव्य स्वतंत्र है। इस प्रकार सबके साधारण 6 गुण हैं, अतः किसी का न कुछ कर सकता हूँ, न बिगाड़ सकता हूँ, न बना सकता हूँ, न मेरा यह स्वभाव ही है, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ। यदि इस प्रकार का भाव क्षणभर को भी दृष्टि में आ जावे, तो परपदार्थ का तुरंत त्याग हो जावे, यानी वो अपने से जुदा है ये ख्याल में आ जावे, त्याग हो जाए ना, अभी हमको छोड़ना ही है, वो त्याग रूप ही है, परद्रव्य का त्याग हो जाएंगे, परद्रव्य अपने से भिन्न है ये ख्याल में आ जावे। अपनी श्रद्धा ही तो बदलनी है, चारित्र तो अपने आप आ जाएगा। हम कहते हैं ना, दशा बदलने की चेष्टा नहीं करना, दिशा, मूल में जो भ्रांति थी वो भ्रांति को मिटाना है। हम आए हैं 14 नंबर के पृष्ठ पर, नया पैराग्राफ
सेकंड।
तो नया है ना, अभी
सेकंड
पैराग्राफ है, नीचे का पैराग्राफ। श्रद्धा को अपने भीतर लाने के लिए इस प्रकार का विचार करना चाहिए, ये बात अपने पढ़ी। लोक की देखा देखी पर मुग्ध न होकर अपनी ओर दृष्टि करना चाहिए। क्या कहते हैं, जब हम रहते हैं जिस समाज में, हमारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, और कुछ है, तो कहते देखा देखी जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग कर रहे हैं, हम भी वैसा करना चाहते हैं, इसको कहते देखा देखी। तो लोक की देखा देखी पर मुग्ध न होकर, लोग के नहीं समाज की कहो, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी, अपनी ओर दृष्टि करना चाहिए। यानी पहले में पहले मैं कौन हूँ ये नक्की करना है, एक कथा है कि बाप बेटा दोनों चले जा रहे थे। बाप घोड़े पर बैठा था और बेटा पैदल चल रहा था। आगे गांव के आदमी बोले, यह आदमी कितना बेवकूफ़ है, कितना स्वार्थी खुदगर्ज है कि स्वयं तो घोड़े पर बैठा है और लड़के को पैदल चला रहा है। बाप ने कहा, बेटा तू घोड़े पर बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। दूसरे गांव वाले इस दशा में इन दोनों को देखकर बोले, यह लड़का कितना मूर्ख है, नालायक है कि स्वयं तो घोड़े पर बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है। इस बात को सुनकर उन्होंने विचार किया कि दोनों ही बैठ जावे और दोनों घोड़े की पीठ पर बैठ गए। तीसरे गांव में पहुंचे तो सब ग्रामवासी बोले, मालूम पड़ता है घोड़ा इन्होंने किसी से मांगा है, इनका स्वयं का नहीं है, जो दोनों के दोनों उसकी पीठ पर लदे हुए हैं, मुफ्त का समझकर बेचारे पर दया भाव नहीं रखते। बहुत विचारने के पश्चात वे दोनों पैदल चलने लगे तथा घोड़ा साथ साथ कर लिया। आगे चौथे गांव में पहुंचने पर उसके ग्रामवासी बोले, ये कितने मूर्ख है कि स्वयं पैदल चल रहे हैं और घोड़ा ऐसे ही खाली चल रहा है, इस पर बैठकर ये जा सकते थे। देखो भैया, यहाँ पर चार ही बात तो हो सकती थी, बाप बेटा उभय और अनुभय। जैसे कि दर्शन में सत असत उभय अनुभय चार बातें हैं, पांचवी बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी तो दोनों में ताकत नहीं कि वे घोड़े को कंधे पर लाद कर चल सकते। अतः भैया, दूसरों से प्रशंसा की इच्छा रखना व्यामोह को प्रवृत्त करना है। ये धन रुपया ऐश्वर्य आदि सब आदि अपने में ही परिणमन करते हैं, तब इनमें फिर क्यों मोह रखा जावे। क्या कहते हैं हम, कहते हैं धन रुपया पैसा वो तो फुटगल है, उसका परिणमन उसमें उसके अपने कारण हो रहा है, उसका अपने पास आना या जाना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, वो उसके अपने कारण होता है।
व्यामोह यानी
मोह
विशेष रूप से मोह, यानी अपना प्रशंसा कोई करे अपनी स्वयं की,
यानी दूसरा हमको अच्छा कहे, इसलिए अगर हम
को मोह है, ऐसी बात बोल,
यानी किसी ने अपनी निंदा की तो चलो हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, लोग ऐसा बुरा कहते ना, तो इन्होंने पहले बाप बैठा था, फिर बेटा बैठा, फिर दोनों बैठे, फिर दोनों उतरे, तो कहते हैं लोगों को ही खुश रखने की कोशिश करते हैं, या लोग अपने को अच्छा कहे ये बात की कोशिश में, तो कहते हैं उसमें तो कुछ हाथ में लगने वाला नहीं। तो यहाँ लिखा ना धन, ये पेज नंबर 15 पर आए हम, धन रुपया ऐश्वर्य आदि अपने में ही परिणमन करते हैं, यानी उनके अपने में कर रहे हैं, तब इनमें फिर क्यों मोह रखा जावे। हे प्राणियों, जैसा वस्तुओं का स्वरूप है वैसा मान लो, वैसा मान तो लो, फिर स्वयं ही सुखी हो जाओगे। देखो, मानने मात्र की बात पहले कंडीशन डाली और वहीं से शुरुआत हो जाएगी। करना धरना तो कुछ है ही नहीं, पर में तो हम कर ही नहीं सकते, ये पर को पर रूप से जानना है, अपने को स्वरूप से जानना है। भैया, सच्ची बात को सच मानने में क्या बुराई है, यहाँ तो कोई बुरी है और अभी इसको कल्पना करो सच है, ऐसा तो ऐसे तो कोई बात है ही नहीं, जो सत्य है उसको सत्य मानना है। श्रद्धा से च्युत हुआ प्राणी इस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो सकता। चारित्र से च्युत होकर श्रद्धा का आश्रय पाकर फिर भी कभी पार हो सकता है, यानी संयम से भ्रष्ट भी हो जावे फिर भी श्रद्धा उसकी यानी सम्यक तो बना रहे, इस तरह से वो कहना चाहते हैं। अतः अपनी श्रद्धा ठीक रखनी चाहिए। रत्नत्रय की पूर्णता क्रमशः होती है, जैसे जीवों का समय दर्शन होता है तो उन्हें तीन ही तैयारियां करनी होती है, अधकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये क्रमशः हो गए। चारित्र को विकसित करने के लिए अनुव्रत धारण करना चाहिए, भी चाहिए वाली बात है ना, ये तो चरणानियोग की कथा है, जिसके ऐसे परिणाम है कि अभी वो पांचवें गुणस्थान के योग्य होते हैं तो शुरू में अनुव्रत धारण करने के परिणाम आते हैं, ये परिणाम आए इसलिए उसको पांचवा गुणस्थान होता है, ऐसा नहीं है। चारित्र तो अंतरंग की रमणता है, उसी को चारित्र कहते हैं। अपने ज्ञान आदि अपने सहायक है। हमें यदि धर्म साधना में कोई सहायक है तो वह भी तभी जबकि हम में कुछ बल है। क्या कहते हैं, यानी यहाँ उपादान से ही कार्य होता है तब निमित्त पर आरोप आएगा। यहाँ लिखा ना कि हमें यदि धर्म साधना में कोई सहायक है तो, यानी निमित्त हो तो, कभी वह भी तभी जबकि हम में कुछ बल है। यानी हम अपने उपादान से परिणमित होते हैं तो बाह्य निमित्त कौन से, यहाँ तो सहचर रूप अनुग्रता आदि को निमित्त कहेंगे, उसको साधन कहेंगे। जैसे किसी रोगी को डॉक्टर दवा आदि पिलाकर ठीक करता है, वह तभी तो संभव है जबकि उसमें जीवित रहने की शक्ति अवशेष है। यानी उसके तो जीवित रहने की उसकी पर्यायगत योग्यता है, तब हम डॉक्टर ने दवा पिलाई उसको जीवित रखा ऐसा कहेंगे, आरोप आएगा तभी। तो उस जीव की वहाँ रहने की, उस पर्याय में रहने की योग्यता लेना। आयु कर्म भी ये निमित्त है क्योंकि वो भी परद्रव्य है, वो भी जड़ है। परंतु वो नियम रूप निमित्त है, इसलिए उसकी बात आती हमेशा कि आयु है तो तुम क्या जी लाओगे उसके। तो कहते उसमें पेज नंबर 15 है और अभी हम नीचे पहले पैराग्राफ के नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रहे थे कि डॉक्टर दवा पिला कर ठीक करता है, वह तभी तो संभव है जबकि उसमें, यानी उस जीव में जीवित रहने की शक्ति अवशेष है। यानी अभी वो मनुष्य पर्याय उसकी बाकी है, अभी मनुष्य भव उसका, यानी उस जीव की योग्यता लेना, वो कर्म की बात नहीं लेना है, जीव की अपनी। तो तभी संभव है, यानी उसका भी जीवन कुछ यहाँ रहने का काल बाकी है तो उसके ऐसे जिसको कहें निमित्त सहज मिल जाए। कभी कभी बीमार है, ऐसे कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाता है, कहो कोई ऐसा भयानक एक्सीडेंट होता है, फिर भी उसकी अगर उस पर्याय में रहने का भी काल नहीं समाप्त हुआ है तो उसमें भी वो बच जाता है। हम देखते हैं कितनी दुर्घटनाएं होती है, कोई बिल्डिंग पूरी यानी जमीन दोस्त हो जाती है, फिर भी कुछ कुछ तो उसमें से भी बच निकलते, छोटे बच्चे भी निकलते उसमें से, तो उनके भी शेष है आगे, यही कहना है। तो कहते जीवित रहने की शक्ति अवशेष है, अन्यथा दवाई का असर वह कैसे सहन कर पाता। अपनी ही श्रद्धा, अपना ही ज्ञान, अपना ही दर्शन, यह ही सर्वस्व सार है, अन्य कुछ नहीं। ऊपर यही बात बताए, वो तो अपने में ही सब कुछ है, अन्य में से कुछ नहीं आने वाला, अपने निजे उपादान शक्ति से ही सब कुछ हो जाता है। अगर धन आदि छूट जाता है या इसका त्याग हो जाता है तो इसमें हमारा क्या नुकसान है। यदि ये प्राणी मिले हुए ऐश्वर्य धनादि में अनासक्ति, अनासक्ति, आसक्ति नहीं, उसमें वृद्धता नहीं, मेरा 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 मेरा, ये तो उसमें ममत्व भाव नहीं, उसको कहेंगे अनासक्ति है। क्योंकि देखो धन क्या है, तो जड़ है, परद्रव्य है, वो तो अभी संयोग में है, उसके अपने कारण आया है, उसके अपने कारण वो दूर होगा, परंतु वो संयोग हुआ तो मैं जरा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया, क्या बढ़ा,
बढ़ा।
क्या बढ़ा, धन बढ़ा, धन ज्यादा मिला, तो क्या हुआ आपको, मद आया। तो मद आना चाहिए ना, वो अपने में क्या बढ़ा, मेरे मत बढ़ा, मत बढ़ा नहीं, परंतु हम ऐसा विचार करेंगे, ये तो पुद्गल है, पुद्गल है, अपने से भिन्न ही है,
मेरे स्वरूप में
तो वहाँ वो, हाँ वो जो धन संपत्ति कम है या ज्यादा है उसमें मेरा कोई नफा नुकसान नहीं, ऐसा सोचना है, उसको मेरा है मानते हैं तो मत बढ़ता है। और मेरा क्यों मानना, क्योंकि उसमें कुछ विशेषता भाषित होती है। यानी अपने को अभी हम बहुत हीन दीन समझ रहे थे, अभी हम बहुत अच्छे हो गए, क्यों, ये परद्रव्य के संयोग के कारण, किसके कारण, जड़ के कारण। स्वामी जी कहते धूलपति हो गया, ये धूल, धूल नहीं तो क्या है, पुद्गल परमाणु का पिंड है वो। तो यहाँ कहते हैं यदि ये प्राणी मिले हुए ऐश्वर्य धनादि में अनासक्ति की बुद्धि रखकर चलता है तो निश्चित आगे उसे इससे भी तिगुना प्राप्त हो जाता है। पूर्व जन्म में हमने उपेक्षा की होगी, तभी तो आज यह ऐश्वर्य आदि हमें उपलब्ध है। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ तो ऊपर के कमरे में रहता था तथा नौकर नीचे के कमरे में रहता था। एक दिन उसके यहाँ कुछ चोर घुस आए। वह नौकर सर्वदा एक दोहा बोलता रहता था, कौन आवेगा कौन जावेगा लेने, देंगे खुद बुलाकर, होंगे दयालु तो देंगे खुद आकर। कौन जावेगा लेने, देंगे खुद बुलाकर, होंगे दयालु तो देंगे खुद आकर। तो इस प्रकार दोहा बोल रहा था कि चोरों को देखकर बोला कि यहाँ क्या खोदते हो, अरे उस पेड़ के नीचे खोदो जहाँ रुपयों का हंडा दबा हुआ है, यहाँ क्या रखा हुआ है। चोरों ने वैसा ही किया। वास्तव में वहाँ खोदने पर उन्हें हंडा मिल गया। उसके ऊपर एक तवा ढका हुआ था। तवे को उन्होंने उठाया तो उसमें से ततैये निकल निकल कर उन्हें काटने लगे। उन्होंने सोचा इसे जाकर उस नौकर के ही ऊपर उंडेल देना चाहिए ताकि ये ततैये उसे ही काटे। उन्होंने जाकर खोदे हुए कमरे के उस स्थान में उसे उल्टा करके पलट दिया। पीछे की तरफ अशर्फियाँ भरी हुई थी, अतः सब अशर्फियाँ उस गड्ढे में भर गई। नौकर उपरोक्त ही दोहा पढ़ रहा था, होंगे दयालु तो देंगे बुलाकर, कौन जाएगा लेने, देंगे खुद आकर। देखो उसने धन के प्रति उपेक्षा भाव रखा तो खुद उसके घर में धन की वर्षा हुई, और धन की लालसा रखे हुए अगले जन्म में मुझे धन प्राप्त हो ऐसा सोचकर ऊपर से ही उपेक्षा दिखाए तो यह भी ठीक नहीं है। यहाँ तो ये तो बिल्कुल लौकिक बातें कर रहे हैं कि उसमें ज़्यादा मिलेगा, परंतु ज़्यादा मिलने से हमारे कुछ नहीं होने वाला। यानी अभी थोड़ी शांति रखो तो ज़्यादा मिलेगा कहने से उसी के कुछ न कुछ इच्छा है। यानी अभी क्यों उपेक्षा करना, अधिक मिले इसलिए, तो कहते नहीं। ये तो मूल में मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, ये सारे मुझसे भिन्न ही है, इसके कारण ना मैं हीन हूँ ना इनके बढ़ जाने से मैं कुछ बढ़ने वाला, ये मूल बात रखनी है। तो यहाँ यही कह रहे कि अभी धन की, यानी अभी हम धन के उपेक्षा करेंगे और अगले जन्म में मुझे धन प्राप्त हो ऐसा सोचकर उपेक्षा दिखाए तो वही ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ लालसा तो पड़ी ही है, वो सच्ची उपेक्षा भी नहीं है। वस्तु स्वयं सिद्ध है तथा स्वतः परिणामी भी है। कौन सी वस्तु की बात है? जीव की। आप क्या कहते हैं? ये कहते
मैं स्वयं
स्वयं है, परंतु वस्तु कहने से सभी छेद रह गए, है ना? वस्तु स्वयं सिद्ध है। कौन सी वस्तु? सभी वस्तु,
प्रत्येक।
मैं तो हूँ ही, परंतु प्रत्येक अन्य भी, जड़ भी स्वयं सिद्ध है और जड़ भी स्वतः परिणामी है। हम क्या सोचते थे, अरे उसको क्या अक्कल है, ये चीजें ऐसी पड़ी रहती है, हम उठाकर ठीक ठाक रखते तो चलती, मैं तो ऐसी पड़ी रहती, उसको क्या अक्कल है उठकर चलने की है क्या? वो डब्बे में आटा पड़ा था, हमने उसकी रोटी बनाई तब बनेगी नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं? तो ये कहते वस्तु स्वयं सिद्ध है तथा स्वतः परिणामी भी है। ये हर एक द्रव्य का जो परिणमन होता है उसके अंदर जो उपादान शक्ति है, निज शक्ति है, उसी से कार्य होता है। और हमें तो सारे ही दिखाई देते हैं बाह्य अन्य अन्य वस्तुओं के जो परिणमन, और लगता है कि इन अन्य चीज़ों ने इसको परिणमाया। हमारा स्वभाव भी परिणमनशील है, तब मैं दूसरों में क्या करूं तथा दूसरा मुझ में क्या करे। क्या कहना चाहते? प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमती है और वह अनादि से है और कायम रहते हुए कायम निरंतर परिणमन करे, ऐसा प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। तो मैं भी अपने में परिणमन कर रहा हूँ, परद्रव्य भी अपने में कर रहा है, हर एक अपने अपने में परिणमन कर रहा है, बस इतनी बात है। तो मुझे ना अन्य से कुछ लेना देना, ना अन्य वस्तु से मुझे, कोई दूसरा आवे मुझे परिणाम आवे तो मैं परिणाम आऊँ, ऐसी भी बात नहीं है। तब मैं दूसरों में क्या करूँ तथा दूसरा मुझ में क्या करे। प्रत्येक परमाणु अपने में ही परिणमन करता है। ये धन संपत्ति जो दिख रही है तो उसका एक एक परमाणु भी अपने में स्वतंत्र रूप से परिणमित हो रहा है। हमेशा सब कुछ करते हुए भी अपने भाव यही रखें कि यह सब असार है, संसार असार है, क्योंकि सार असार जिसमें कोई सार नहीं है। सार रूप तो मैं स्वयं हूँ, मुझ में ये सब कुछ माल भरा है, बाकी चीजों में मेरे लिए वो सारे निस्सार है, असार है।
देखो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि हमें वस्तु स्वरूप यानी विश्व में जो सारे पदार्थ हैं उनके अपने को अगर उसका स्वभाव ख्याल में आवे तो यहाँ उन्होंने बहुत शॉर्ट में बहुत बढ़िया बात बताई है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध है यानी उसको किसी ने बनाया नहीं है। हम जो मानते थे कि किसी भगवान ने विश्व को बनाया, ये बात तद्दन झूठी रह गई, क्योंकि प्रत्येक वस्तु कब से है तो अनादि से है। और कैसी है? स्वतः परिणामी है, यानी प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन कर सके ऐसा उसका स्वभाव है। तो परिणमन करने का स्वभाव है तो स्वभाव कब खत्म होगा? तीनों काल रहेगा, तो तीनों काल प्रत्येक द्रव्य का परिणमन होगा। और हम ऐसा मानते हैं कि मैं पुद्गल का परिणमन करता हूँ, मैं शरीर का परिणमन करता हूँ, मैं पैसे का परिणमन करता हूँ, मैं हमारे फैमिली के सदस्यों का परिणमन करता हूँ, लेकिन ये कहते हैं तो उनमें भी अपना अपना परिणमन करने की कैपेसिटी है ना, तो तू क्या करेगा? यहाँ ये बताएं कि तू अन्य का क्या करेगा और अन्य तेरा क्या करेगा। यहाँ पर हमारी जो कर्तृत्व बुद्धि है, हम पर को परिणमा सकते हैं, ऐसी जो हमारी मान्यता है वो तो परिणमेगा नहीं तुम्हारी इच्छा के अनुसार, क्योंकि विश्व कितने हैं? एक। और उसको परिणमाने वाले चाहने वाले कितने हैं? अनंत। तो विश्व कैसा उसकी प्रत्येक की इच्छा के अनुसार परिणमेगा? कल में है ना, तो हम ही उल्टा मान रहे हैं। हम सुखी होना चाहते हैं लेकिन मान्यता उल्टी रखते हैं, तो कैसा सुखी होंगे? तो यहाँ तो बता रहे हैं कि हमारा भी स्वभाव परिणमनशील है। और क्या कह रहे हैं? मैं दूसरों से दूसरों में क्या कर सकता हूँ और दूसरा मेरे में क्या करे? यहाँ तो दूसरा यानी हम तो ऐसा ही लेना कि यहाँ तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, प्रत्येक परमाणु अपने अपने से परिणमन करता है और अपने में ही करता है। और हम तो अपना भी परिणमन हो रहा है और हम दूसरों का भी परिणमन करूंगा ऐसा मानकर हम स्वयं दुखी हो रहे हैं। आगे
यथार्थ श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। नीचे से दूसरी लाइन, हाँ। यदि ऐसा न कर सके तो बर्बादी के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो धन संपत्ति तो मिलेगी नहीं, कहती तो बर्बादी होगी, क्योंकि उसके भोगने के पीछे पंजेन्द्रियों के विषय में पड़ा रहेगा तो अगले भव में कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं है। अभी वहाँ तो अपने स्वरूप के बारे में सोचने का अवसर भी नहीं मिल सकता, ये भी हो सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी श्रद्धा यथार्थ बनाए रखो। देखो यथार्थ श्रद्धा से ही ये धर्म की शुरुआत होती है, श्रद्धा समीचीन हो जाती है, फिर बाद में भेद ज्ञान तो चलता रहेगा और अंतरंग में स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। तो पहले में पहले मूल में श्रद्धा से, सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है। 16 नंबर के पृष्ठ पर आए। सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती की संपदा तथा इंद्रादि के भोगों को कौवे की बीट की तरह समझते हैं। ये हमेशा स्वामी जी की भी लय है। हाँ। चक्रवर्ती की संपदा
इंद्र
सारिका भोग काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग।
काग बीट यानी समझी
कौवे के बीटा, हाँ, किसी काम के नहीं, हाँ, कौवे के बीटा के समान, कुछ काम के नहीं। तो सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती की संपदा तथा इंद्रादि के भोगों को कव्वे की विष्टा की तरह बीट की तरह समझते हैं, अर्थात वे विद्यमान वस्तुओं में उपेक्षा का भाव रखते हैं। यानी वो अपने के लिए कुछ तो काम में आएगी, कुछ तो अपने कार्य करी, उससे कुछ तो हम थोड़े बढ़ गए, तो कहते उससे कुछ नहीं लेना देना। वो तो क्या है, वो तो पुण्य के अधीन है, उसको पुराने पुण्य का उदय हो रहा है, उसका फल मिल रहा है, उसमें और हम लगे रहे तो और फिर नया पाप बांधेंगे तो फिर उसको भी भोगना पड़ेगा। यही चल रहा है अनादि से, और कुछ नहीं किया है।
यहाँ कौवे की बीट लिखा है, वो बी नहीं है, वो चाहिए
बीट, बीट चाहिए काग बीट समा। देखो उपेक्षा भाव रखते हैं ना, उनके उनके प्रति कोई लगाव ही नहीं है, उससे कोई अपने को बड़प्पन मानते ही नहीं, अष्टमत से रहित होते हैं ना। समय दृष्टि, समय दृष्टि ऑलरेडी है ये जीव, इसलिए वहाँ ये उपेक्षा रखते हैं ना उनके उनके प्रति, उस पर पदार्थों के प्रति उनके कोई आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, तो कहते उपेक्षा है। हम उपेक्षा नहीं कोई, अरे अपनों नहीं करना है ना, वो द्वेष बुद्धि हो जाती है, या तो राग करता है द्वेष करता है, तो ये उपेक्षा बुद्धि है नहीं, वो तो ना राग ना द्वेष, ऐसी अपेक्षा, ऐसी उसके भाव है। मैं पर पदार्थ का न कुछ कर सकता हूँ, न कुछ कर सका न कर सकूंगा, यानी तीनों काल में अभी भी नहीं कर सकता, पहले तो किया था ना तो कहते नहीं, और भविष्य में भी कभी नहीं कर सकता। केवल विकल्पों से कल्पनाओं से दुखी हो रहा है, क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें तो ऐसा लगता है, हम क्यों दुखी है, संयोगों से, इसलिए प्रयत्न क्या है, संयोगों को सुधारने के करते हैं। और हम दुखी क्यों हैं, अपने विकल्पों से, अपनी कल्पना से, कल्पना में हमने किसी को अनिष्ट माना है, उसको दूर करना चाहते हैं, और कल्पना में ये सारे राग द्वेष कर करके, और हमारे राग द्वेष ही हमारे दुख के कारण है, और कोई परद्रव्य तो कभी दुख का कारण इस जीव को हुआ ही नहीं है, इस बात का तो विचार ही नहीं आता। पहले में पहले वो कोई संग अच्छे कोई संयोग बुरे, फिर इसको रखो इसको छोड़ो, इसी बात चलती। तो कहते केवल विकल्पों से कल्पनाओं से दुखी हो रहा हूँ, अतः इन सब विकल्पों को छोड़कर मैं अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आप सुखी हूँ, यानी श्याम स्वस्मय से सुखी स्वयं। तो ये लेना है कि विकल्प करते करते मैं कभी सुखी नहीं होने वाला। ये तो यहाँ तो सांसारिक विकल्प ही चल रहे हैं, जैसे आत्मा संबंधी भी विकल्प हो गए तो भी तब तक ये आत्मिक सुख का अनुभव नहीं होगा। अभी हम 16 पेज पर ये 5 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। स्वराग वेदना विद्धश्चेष्टे स्वस्यैव शान्तये नोपकुर्वे च नो शान्ति स्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। देखो क्या कह रहे, बहुत अच्छी बात बताई है। स्वराग वेदना विद्ध, विद्ध समझ से विद्ध हुआ, क्योंकि किसी को बाण लगा तो पक्षी विद्ध हुआ, हम कहते हैं ना विंदाई। हाँ, तो क्या कहते हैं, हम किससे विंदाई गए, अपने राग द्वेष से, अपने ही राग द्वेष से हम घायल हो गए, विंदाई गए नहीं घायल हो गए, और फिर क्या प्रयत्न कर रहे, अपने शांति के प्रयत्न कर रहे, ख्याल में आई ना बात। देखो अभी इसका अर्थ हम देखते हैं, नीचे लिखा देखो, मैं अपने राग की वेदना से वेधा हुआ, वेधा हुए ना वो घायल हुआ हूँ, है ना, अपनी ही शांति के लिए चेष्टा करता हूँ। नहीं समझे, ये बच्चों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, क्यों, वो सुखी हो जाए, बच्चों के लिए करें नहीं, बच्चों के प्रति अपना राग है, वो राग का पोषण, वो राग हमको सहा नहीं जाता, वो राग से हम दुखी है और वो दुख का इलाज कर रहे हैं। देखो कोई भी हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे विकल्प जो चल रहे हैं, हम क्यों दुखी है, राग से दुखी है, राग द्वेष सब वो राग में आ गए, और हम इलाज काहे का करते हैं, वो दुख मिटाने का, रस्ते में जा रहा है, कोई भिखारी है या कोई वहाँ गरीब यानी छोटा प्राणी है, दुख से तिलमिला रहा है, उसको देखकर हमको दया आई और हमने मदद करनी चाही, उसकी मदद की कि अपना दुख मिटाना चाहा, हमें करुणा आई, उस करुणा से हम दुखी है, हम उस दुख को मिटाना चाहते हैं, उस दुख का इलाज कर रहे हैं, यही कह रहे हैं यहाँ पर। देखो फिर पढ़ेंगे, मैं अपने राग की वेदना से वेधा हुआ अपनी ही शांति के लिए चेष्टा करता हूँ, यानी मैं दुखी है अपने राग से, और वो हम जो कुछ उस राग के कारण जो कोई प्रयत्न चल रहे उस राग की पूर्ति के लिए, राग या द्वेष जो कुछ है, तो वो हमारे अपनी शांति के लिए करते हैं और मानते हम पर का उपकार करें, पर का कुछ नहीं कर रहे। ख्याल में एक वाक्य में कितना रहस्य भरा है, देखो कि मैं अपने राग की वेदना से वेधा हुआ अपनी ही शांति के लिए चेष्टा करता हूँ, न दूसरों का उपकार करता हूँ और न उससे शांति होती है। मैंने उनका उपकार किया, देखो मैंने मदद की, उनको इतना लाखों रुपया दिया, मैंने उनकी जो कुछ किया, आपने खाना खिलाया लोगों को, ये बड़े बड़े कारखानदार भी समझते हैं ना, हमने इतने लोगों को रोजी रोटी बना दी, उनके लिए हमने ये किया, तो कहते ये अपने राग का पोषण कर रहा है, अपनी शांति चाहता है, तो हमने ना दूसरों का उपकार, मैं ना तो दूसरों का उपकार करता हूँ ना उससे शांति होती है। अब सच्ची दृष्टि वाला होता हुआ मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी होऊं, क्योंकि जितने भी राग द्वेष के परिणाम है सब दुख के परिणाम है, और फिर विकल्प करता रहता है और उसकी पूर्ति करता रहता है और शांति चाहता है और मानता है मैंने दूसरों को इतना भला कर दिया।
हम जहाँ पर भी जाते हैं तो सब लोग, बहुत अंशी लोग कहते हैं कि आपके हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार है कि आप यहाँ इतनी प्रतिकूलता में आके घर बार छोड़ के हमको सिखाते हैं। तो हम भी वहाँ ऐसा ही बोलते हैं, हम कुछ आपके ऊपर उपकार नहीं करते, हम अपने राग का पोषण करते हैं। तो लोगों को लगता है भाव पता है,
यहाँ लिखा है ना, देखो मैं अपने अंतरंग की वेदना से बिंधा गया, बिंधा गया समझ में ना, घायल हुआ, अपनी शांति के लिए चेष्टा कर रहा हूँ, स्वयं की जो मेरी पीड़ा है उसे सहन न कर, क्या कहा, यानी अपने में जो पीड़ा हो रही है उस सहन नहीं हो पाती है, तो उसे सहन न कर पाने के कारण ही शांति प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ, इससे मैं किसी का उपकार नहीं कर रहा हूँ। ग्रंथकार भी ग्रंथ लिखने का यही कारण बताते हैं कि संसारी जीवों का दुख देखकर मुझे दुख हुआ, अतः अपनी वेदना को शांत करने के लिए ही मैंने ग्रंथ लिखा। वैसे तो ग्रंथ लिखने का वो शब्दों की रचना है वो तो है ही, परंतु यहाँ अलग अपेक्षा से बात हो रही है कि उनके ये जो समझाने का विकल्प आया है, क्यों लोगों का दुख, ये उनके कहाँ हुआ दुख, यहाँ हुआ, इनको समझा कर इनको उपदेश दूं ऐसा उत्पन्न हुआ, और उसी का दुख वो सहा नहीं जाता तो ग्रंथ की रचना हुई। यहाँ लिखा ना, अतः अपनी वेदना को शांत करने के लिए मैंने ग्रंथ लिखा, इसमें परोपकार कैसा, मैंने जो कुछ किया वह अपनी शांति के लिए तो किया, किसी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य में परिणमन हो ही नहीं सकता, कोई गुरु आकर सबको समझा देवे ये बात हो ही नहीं सकती, फिर किसी भी पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि व कर्तृत्व बुद्धि क्यों हो, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं, मुझे मेरे लिए अच्छा है ये बुरा है, ये तो पर चीज है, उसमें अच्छा बुरा क्या है, उसके अंदर ये अच्छा बुरा की कल्पना है और ये भ्रम के कारण होता है, और कर्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि ने ये इनका कार्य मैं कर रहा हूँ ऐसी मान्यता, उसको कर्तृत्व बुद्धि कहते हैं। हमने अभी अभी देखा प्रत्येक अनंत द्रव्य सारे ही सारे अपने में स्वतंत्र है, परिणमनशील है, निरंतर परिणमन कर रहे हैं, कोई अन्य उसका कुछ नहीं कर सकता है, तो पर का कार्य मैंने किया ये बात आई कहाँ से, और ये कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार में पागल हो रहा है, ख्याल में है ना, और दुखी हो रहा है, ये उसका दुख का कारण है। वो समझता है देखो मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैं सबसे इतना महान हूँ, अरे पर वो स्वयं कितना दुखी इस कर्तृत्व बुद्धि में। वीतराग ज्ञान अर्थात राग द्वेष रहित ज्ञान न होने के कारण क्लेश ही लगाया है, यानी जिसको वीतरागता नहीं है, वीतराग ज्ञान कहा उन्होंने, राग रहित ज्ञान नहीं है इसलिए वो दुखी है।
हम तो बहुत बार ऐसा मानते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है वे सुखी होंगे, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि जो पैसा कमाने का या मिलने का जो राग है उसी से जीव दुखी है। यहाँ कह रहे हैं राग द्वेष रहित ज्ञान न होने के कारण क्लेश ही है। तो ये सारा जो कुछ हम सीख रहे हैं वो अपने पे घटित करें हम, कि हमारी क्या मानसिकता है। हमने तो ऐसे लोगों को सुना है कि आजकल के ज़माने में पैसे से बढ़कर क्या चीज़ है, तो पैसे को तो हासिल करना ही चाहिए ना, ऐसा हमसे प्रश्न करें। बोला हाँ पापा जा, तुझे दुखी होना है तो कौन क्या कर सकता है, क्यों हंसती है आप? कितना सरल लिया है, राग द्वेष रहित ज्ञान यानी वितरागता नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, यानी राग द्वेष तो है उसके कारण क्लेश ही है, दुख का तो कहीं नाम और निशान नहीं।
आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। दूसरों को दुखी देखकर आचार्यों को अनुकंपा हुई, अनुकंपा ने दया का परिणाम, अनुकंपा उसे कहते हैं कि दूसरों को दुखी देखकर हृदय पसीज जाना, भीना होना, हृदय भीना होना, पसीज जाना है ना, विरगड़ने अपने करुणा आना,
पिघल जाना।
अतः उस अपनी वेदना से भिन्नकर, क्या कहा, ये अनुकंपा रूप वेदना अपने में उत्पन्न हुई, ख्याल में आई बात, पर मैं उसको भले उन्होंने देखा परंतु अनुकंपा के परिणाम यहाँ हुए और उससे मैं दुखी हूँ। तो कहते उस अपनी वेदना से भिन्न कर ही आचार्यों ने चेष्टा की, चेष्टा ने प्रयत्न, ये मराठी वाली चेष्टा नहीं, मराठी में चेष्टा नहीं, वो तो टीका टिप्पणी छट्टा मस्करी उसको चेष्टा कहते, वो वाली बात नहीं, प्रयत्न की और ये शास्त्र बन गए, यानी उनके तो लिखने का परिणाम हुआ या समझाने का विकल्प आया, शास्त्र की रचना उन्होंने की है तो कथन है, व्यवहार का कथन है, क्योंकि ये तो रचना तो शब्दों की है, पुद्गल की रचना पुद्गल से हुई है, तो उन्हें अपनी ये वेदना सहन नहीं हो पाई तो उन्हें ये शास्त्र लिखने का विकल्प आया। उनकी ये भावना नहीं थी कि मैं उपकार कर सकता हूँ या करूँगा, यानी वो जला भी नहीं मानते हैं कि मैं, मेरे कारण ये लोग सुधरेंगे या इनको ऐसा मैं निमित्त तो बनूंगा, ऐसा ऐसे कुछ नहीं था उसके अंदर, बल्कि इस चेष्टा में उपकार हो गया, ये सहज हो जाता है। उनके तो समझाने का विकल्प आया, ग्रंथ की रचना उसके अपने योग्यता से हुई और सामने वाला जो अपने स्वयं की योग्यता से समझ गया, ऐसे सहज ये सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। अतः इससे आत्मज्ञान तथा आत्मध्यान का मौका मिल गया। क्या कहते हैं, ये जो लिखने के परिणाम है, लिखने के हो बोलने के हो, उस समय जीव भी उन विचारों में, उस तत्व के विचारों में खोया है कहो, या उसके गहराई से उसका चिंतन भी होता है वहाँ पर, तो उसके अपने लिए उसका उपकार होता है, पर का कुछ होगा नहीं होगा वो बात अलग है, यहाँ लिखे ना, इससे आत्मज्ञान तथा आत्मध्यान का मौका मिल गया। छठे गुणस्थान में ऐसे भाव मिल जाते हैं कि छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में आ जाते हैं, वो गुण और स्थान एक लेना, छठे गुण स्थान से सातवें में आ जाता है। यानी बीच बीच में वो ऐसे लिखते लिखते भी वो परिणाम अपने में वो लीन होने के हो जाते हैं। अतः ऐसे शुभोपयोग का ध्यान किया करते हैं जो ध्यान में बढ़ने का बाधक न हो। इसको धर्म, ये तो व्यवहार धर्म ध्यान भी कहते हैं। शुभ भाव उनके ऐसे ये शुभोपयोग से वो शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। ये लिखने का परिणाम तो शुभ भाव, परंतु मैं लिख सकता हूँ, दूसरे को समझा सकता हूँ, ये बात नहीं है वहां पर। उसमें तो आत्मा संबंधी ही उनकी जो कुछ चिंतन धारा चल रही है, तो वो चिंतन धारा करते करते वो स्वयं में डुबकी लगाते हैं। बीच बीच में तो हो जाता है, रुकना तो हो ही जाता है, और उससे अपने में लीनता बढ़ती चली जाती है। और ये है ही ऐसा, जो लिखना कहो या किसी सूक्ष्म की चर्चा करते हैं, हम बोलते भी है, बोलने का अपना कारण है, अपनी तो उसमें जो कुछ चिंतन की एक धारा चलती है, तो उसमें उस जीव को स्वयं को बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरों को हुआ है नहीं हुआ उसे वो जाने, वो उनकी योग्यता से हुआ या नहीं हुआ कहेंगे, कहने के लिए कहेंगे इसने इनको समझाया, इन्हें इसका इतना लिखा, परंतु उस काल में उस जीव की अपनी जो कि विशुद्धि, ये अमृतचंद्राचार्य ने मम परम विशुद्धिर भवतु, लिखने में विशुद्धि होती है, हाँ, लिखते लिखते वहाँ का उपयोग छूट कर अपने में लीन हो जाता है और उनकी अपनी विशुद्धि बढ़ती है। तो ये कोई अन्य पर का उपकार ही नहीं करता है, अपने ही वहां पर अपना ही स्वयं का हो जाता है। देखो, अतः वे ऐसे शुभोपयोग का ध्यान किया करते जो ध्यान में बढ़ने का बाधक न हो। क्या कहते हैं? जो बाधक न हो। अन्य शुभ भाव तो बाधक होते हैं, और ये कैसे है? क्योंकि ये सब आत्मधारा, जैसे आत्मभावना संबंधी, आत्म समाधि संबंधी लिखते हैं जब आचार्य, तो लिखने का भी विकल्प छूटकर वहां अपने में गुप्त हो जाते बारंबार। तो ये सच्चे ध्यान में बाधक नहीं है। ग्रह संबंधी वेदना से, राग की वेदना से जो चेष्टा की जाती है, वह शुद्धोपयोग की दृष्टि से ही है। क्या कहते हैं? ये कैसी वेदना हुई? जीवों को आत्मा संबंधी समझाने के विकल्प आए, ये समझाते समझाते वो अपने में गुप्त हो रहे बारंबार, तो ये कार्यकारी है। और ग्रह घर से संबंधी जो विकल्प आए, राग आए, बच्चे संबंधी, धन संबंधी, अन्य चीजों संबंधी, तो कहते कि वो राग की वेदना से जो चेष्टा की जाती है, यानी सांसारिक प्रयोजन से जो राग आ रहा है, राग ने कषाय हो रहे और उसके लिए जो हमारे प्रयत्न हो रहे हैं, वह शुद्धोपयोग की दृष्टि से है ही है, वो छोड़ने लायक, क्योंकि उससे कुछ शुद्धोपयोग में मदद नहीं होती, उल्टा तो हम उससे दूर हो जाते। आत्म ध्यान अति दुष्कर है, किंतु स्वाधीन होने से अति सरल। क्या कहते हैं? ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे पर स्वाधीन है ना, तो अत्यंत तो सरल है, तो इसने कठिन मान के रखा है, क्योंकि उसको बाकी इंद्रियों के विषय तो सरल लगते हैं, परद्रव्य का कार्य तो बहुत सरल लगता है, सुबह से उठकर कितने सारे परद्रव्य के काम कर देते हैं, झाड़ू पोछा करना है, रोटी बनाना है, पानी भरना है, और क्या क्या करना है, सब कुछ कर देते हैं, वो कितना सरल है, चाय बनाना कितना सरल है ना। और आत्मा का ध्यान, अरे बहुत कठिन है। तो कहते वो वही तो साधन, एकमात्र वही करने योग्य और वही कर सकते, अन्य का कुछ कर ही नहीं सकते। क्या लिखे? दुष्कर है किंतु स्वाधीन होने से अति सरल है। और इतने अनंत जो सिद्ध हो चुके हैं, उन्होंने कर दिखाया है, तो हम आप क्यों नहीं करेंगे? अनंत जीव, अनंत कई अनंतता ख्याल में लेंगे तो भी ऐसा लगता है कितने सारे जीव, अनंत कोई असंख्यात की भी संख्या इतनी बड़ी है, अनंत की तो क्या बात होगी। शुभोपयोग में रहने वालों को लौकिक सुख होता है, और वो भी शुभोपयोग के कायम नहीं रहता हो, ये समझ लो। अंतर्मुत अंतर्मुत में पलटता रहता है, एक जैसा शुभ परिणाम थोड़ी कायम रहेगा। तो शुभोपयोग में रहने वालों को लौकिक सुख होता है, किंतु शुद्धोपयोगियों को, ये शुद्धोपयोग मालूम है क्या है? देखो यहाँ शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है और शुद्ध उपयोग, ऐसे तीन शब्द आते हैं। शुभ भाव तो शुभ उपयोग, अशुभ भाव में चले जाते तो अशुभ उपयोग, शुभ और अशुभ से रहित अपने शुद्धात्मा में लीन होते हैं उसको कहेंगे शुद्धोपयोग। पूछा नहीं समझे तो, किंतु शुद्धोपयोगियों को परम आत्मीय आनंद होता है, साधा सुधा नहीं, परम उत्कृष्ट आत्मीय आनंद, आत्मिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद होता है। और सारे जो पुण्य के परिणाम की एक दूसरे को उपदेश करते हैं, दूसरों को भला करो या ऐसा करो वैसा करो, रोज देव दर्शन करो, दया करो, दान दे दो, यात्रा करो, ये क्या है? शुभ उपयोग हुआ। अरे पर वो बड़ा वो मिथ्यात्व वाला वैसा ही पाप रखा है, और थोड़ा बहुत पुण्य करके ये समाधान मानता है, क्यों? क्योंकि वो लौकिक सुख की चाह उसके पीछे पड़ी है। पुण्य भी करता है तो उसका फल लौकिक सुख है उसको मालूम है, तो इसलिए वो तो लौकिक सुख की चाह उसके पीछे पड़ी है, जो कि सच्चा सुख भी नहीं है। सुख के लिए ही प्रयत्न करना है तो सुख क्या है पहले समझना चाहिए, वो कहाँ मिलेगा उसको समझना चाहिए, और उसका कितना सरल बात है वो तो भूल ही जाता है। और जो उसने मान लिया है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा उसके पीछे चलता है। तो कहते यहाँ लिखा ना, शुद्धोपयोगियों को परम आत्मीय आनंद होता है, आत्मानुभव के लिए, धर्म की प्रेरणा के लिए शुभोपयोगियों का जल्दी मन हो जाता है, किंतु विषयों में राग होने पर इस ओर को ध्यान होना कठिन होता है। ये इन जनरल बात की है उन्होंने कि जो विषयों में रचे पचे है उनको कोई ये बातें सुनाने लगेगा तो कहते हमको तो इसी में मजा है, हमको आपकी वो बात नहीं चाहिए, हम व्यर्थ समय क्यों बर्बाद किए, और हमारा ये सुख है जो हाथ में वो छोड़ना और दूसरे की जो मालूम नहीं उसके पीछे चले जाना, तो इसमें क्या मजा है, ऐसा लगता है। इसलिए कहते हैं जो शुभोपयोगी है कौन, जो मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, या जो उसकी जिसके उसी, तो उनको ये बातें चांस है। उनको ऐसे भी होते हैं ना शुभ की रुचि वाले हैं तो ये भी उनको अच्छा नहीं लगता, उनको कहते हम तो व्यवहार धर्म करेंगे, ये आपकी तत्व ज्ञान की बातें हमको नहीं चाहिए, ऐसे भी मिलते हैं। इस कारण शुभोपयोग का भी उपदेश है। देखो ये कहीं कहीं ग्रंथों में भी, ये कार्तिकेय अनुपेक्षा में भी शुरुआत में लिखा है कि जो कोई बिल्कुल अज्ञानी जीव है, कुछ समझता नहीं है, भोला है, तो उसको पुण्य की रुचि यानी पुण्य का फल बता के भी इस मार्ग की ओर लाया जाता है कि देखो रोज देव दर्शन करना, दूर से मंदिर को देखोगी तो भी एक उपवास का फल मिलता है, ऐसे आपने सुनी है कि नहीं? बस तो मंदिर के दरवाजे में गए, अंदर चलते चलते 10 उपवास का फल मिला, तो भगवान को दर्शन किया तो इतने, ऐसे उसको लोभ पैदा करके कभी कभी, अरे क्या अभी तुम युवान हो, किसके आयु का क्या भरोसा, ऐसे डर दिखा के भी उसको इस ओर प्रवृत्त किया जाता है। यानी किसी को लोभ दिखाएंगे, किसी को डर डराएंगे, या ये शरीर इतना घिनौना, ऐसे घृणा उत्पन्न करके भी, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है? वो ये बातें सुने कि मैं आत्मा हूँ और उसको कैसे पहचानना, ये बातें सुनने के लिए वो तैयार हो जाए, इसलिए उसको लोभ दिखाकर कषाय उत्पन्न करा के भी ये काम किया जाता है। सामने वाला जीव कैसा है उसके अनुसार उसको उपदेश दिया जाता है, जब वो सुनने लगे तो ये गहरी बातें भी उसको बताएंगे। ये पुण्य से कुछ नहीं होने वाला, पुण्य तो है ही है, पुण्य पाप बराबर है, परंतु सामने वाले जीव की किस पोजीशन पर है वैसे उसको उपदेश भी दिया जाता है। परंतु जो सच्चा तत्व ज्ञान है वो तो अंगीकार करना है। अभी कौन जीव किसको देखकर क्या उपदेश देना चाहिए वो उसके ऊपर निर्भर है, वक्ता के ऊपर निर्भर है। परंतु हम अभी आप इतने अभ्यास होने के बाद अभी मूल बात हमको पकड़ने में आनी ही चाहिए। देखो इस कारण शुभोपयोग का भी उपदेश है और चरणानुयोग में तो इसी की बात होगी मुख्यतः से। जिन्हें शुद्धोपयोग हुआ उन्हें शुभोपयोग के बाद ही हुआ। वैसे असंयत समय दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला जीव राग विषय भोग आदि के होते हुए भी उनमें उपेक्षा भाव रखता है, यानी वो अभी यानी चौथे गुणस्थान वाला अविरत समय दृष्टि, उसी को असंयत समय दृष्टि कहते। कहीं अविरत शब्द आता है, कहीं असंयत आता है, ये चौथे गुणस्थान का नाम है। यानी वो समय दृष्टि है, अभी उसके व्रतादि नहीं है, अभी घर गृहस्थी है उसकी और वो सारे विषयों में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु फिर भी उनसे मैं सुखी होता हूँ ऐसी मान्यता नहीं है। मिथ्या दृष्टि को जैसे उसमें वृद्धता है, इनके कारण मैं सुखी हूँ, एकदम उसको हा 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 और ऐसा हो जाता है विषयों में, ऐसा उसके कुछ नहीं है। तो कहते हैं चौथे गुणस्थान वाला जीव राग और विषय भोग आदि के होते हुए भी उनमें उपेक्षा भाव रखता है, क्योंकि उनसे राग द्वेष अभी अनंतानुबंधी वाला राग नहीं रहेगा, तीन कषाय चोकड़ी है, परंतु वो भी उठने वाले राग को अपने में ही उठते हैं। तो मैं ज्ञान वाला, मैं ज्ञान हूँ और ये राग भिन्न है, इसी भिन्नता का उसको हर समय एहसास है, ज्ञान है, इसलिए उसके उपेक्षा भाव। पहले क्या ये मेरा है मानता था, तो ये मैं हूँ मेरा है तो उसमें उपेक्षा भाव नहीं हो सकता। अब ये अपने से भिन्न है उसने मान लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, अपना भिन्न अनुभव आया उसको, तो ये अभी मेरे में है ही नहीं राग, उठ रहे हैं अपनी पर्याय में होते हुए भी ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो उसकी उपेक्षा होती है। यानी उसके शुभ भाव भी आए तो उसमें क्या है, मैं तो इसमें अटका हूँ, ये तो कुछ करने जैसे थोड़ी है, श्रद्धा में क्या लिया, करने जैसे नहीं है, फिर भी हो रहे हैं इस तरह, इसलिए उसको उसमें उपेक्षा भाव रखते। विषय भोगों में रहते हुए भी यह सोचते हैं कि कब और कैसे यह छूटे, यानी उसमें उनकी अटपटा ऐसा लगते है, चटपटाहट लगती है कि कहाँ मैं अटका हूँ, क्या हो रहा है, इनसे छूटकर मैं अपने में ही स्थिर हो जाऊँ, अभी कमजोरी वश नहीं हो पाता, फिर भी बारंबार भावना तो यही रहती है। देखो कितना कठिन कार्य है यह कि उनको करता भी है और झंझट भी मानता है, लोगों को लगता है कर रहा है और उसके तो पता है कि ये हो रहे हैं, ये अपनी कमजोरी है। कितने ज्ञान बल की बात है और मैं केवल राग चेष्टा में लगा हुआ हूँ, दूसरों का उपकार क्या कर सकता हूँ, ऐसा ज्ञानी जीव सोचते हैं। यानी उनको पता है ये तो मात्र राग के विकल्प हो रहे हैं, मैं दूसरे का तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। किसी जीव को दुखी देखकर या भूखा देखकर रोटी दी तो उसमें हमने उसका क्या उपकार किया, भैया स्वयं की शांति के लिए स्वयं की वेदना से बिंद कर ही तो रोटी दी, यह तो स्वयं का ही उपकार हुआ, और हम सोचते हमने दूसरों का उपकार किया। व्यवहार में जब हम ऐसा कहते हैं इसने उस पर दया की अथवा रोटी देकर उसका उपकार किया, किंतु वास्तव में देखा जावे तो उसने स्वयं ही राग की वेदना से बिंद कर चेष्टा की, इसमें उपकार कैसा। एक जज था, एक दिन वह अपनी कार में बैठकर अदालत में जा रहा था, रास्ते में कीचड़ में पड़े हुए गधे को तड़पते देखा, कार रुकवाई और स्वयं ही उसको बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े। साथ में जो चपरासी था उसने कहा कि कहा भी आप क्यों निकाल रहे हैं, हम निकाल देते हैं, किंतु उसने कुछ बात न सुनते हुए अपने हाथों से ही उस गधे को बाहर निकाला। कपड़ों पर भी कीचड़ की छींटे लग गई, इतना समय नहीं था कि जाकर कपड़ा बदल आवे, अतः उसी पोशाक में अदालत पहुंच गए। जब उनको सबने इस दशा में देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि आज क्या बात है जो जज साहब की ऐसी दशा है। आज तक कभी भी बिना स्त्री के कपड़े नहीं देखे, नहीं गंदे। फिर आज क्या बात हुई? जिनका उनसे वार्तालाप होता था उन्होंने पूछा कि जज साहब बात क्या बात है जो आज ऐसी दशा बना रखी है। साथ वाले नौकर ने संपूर्ण घटना सुनाते हुए बताया, साहब बड़े दयालु हैं, रास्ते में गधा फंसा था, मैं उठाने को तैयार था किंतु इन्होंने कुछ न सुनकर अपने हाथों से ही गधे पर दया की। तो जज साहब बोले, नहीं भैया, मैंने जो कुछ भी किया अपना ही उपकार किया, गधे का नहीं। ये इनकी बात है ना, अमेरिका के कौन वो अंकल अब्राहम लिंकन की बात है। हो गया समय, यही रुकेंगे वो, क्योंकि बड़ा पैराग्राफ है ना, आगे यहाँ रुकते हैं अभी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तकनम सदा।